शांति। मधुबन के विभिन्न प्रोग्रामों में आपस में हम मिलते हैं, इसलिए परिचित तो है ही, पर शायद स्पार्कलर ग्रुप के हिसाब से फिर से परिचय दिया गया। बड़ी संख्या में इस विंग में सभी भाई बहने भाग ले रहे हैं। शायद ही कोई विंग होगी जिसमें इतनी बड़ी संख्या में हाजिर रहते हों, क्योंकि ये विंग सेवा के हिसाब से तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से भी है, तो हरेक का इसमें इंटरेस्ट बना रहता है। और बाबा के कहे अनुसार हम साइलेंस की शक्ति वाले और वो साइंस की शक्ति वाले, तो साइंस की कंपटीशन में साइलेंस की शक्ति वालों का इतना गहराई जरूरी है, क्योंकि विज्ञान जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है और चीजें या सिस्टम्स और रिफाइन और क्वालिटी और कॉम्पैक्ट और माइक्रो बना रही है, इस रीति से हम साइलेंस की शक्ति वालों के लिए भी समय आ चुका है कि ब्राह्मण जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं उसको और क्वालिटी बनाने की जरूरत है, और रिफाइन और माइक्रो बनाने की जरूरत है, जिसको बाबा फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। ब्राह्मण जीवन बाबा के तरफ से मिला हुआ वरदान है, गिफ्ट है, जिसे हम सबने स्वीकार किया है और निरंतर उसकी गहराई में जाते रहना सूक्ष्म और ऊंचे अनुभवों को प्राप्त करते रहना, वास्तव में वो ही हमारा प्रोग्रेस है। अनेक सेंटर्स खोलना, संख्या बढ़ना, भवन बनना, ये सब सेवा के हिसाब से है। उसको हम अपनी उन्नति नहीं कह सकते हैं, वो हमारा विस्तार है जो सेवा के लिए जरूरी भी है, लेकिन व्यक्तिगत आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति की जो बात है, उस हिसाब से जब हम अपने आप को देखते हैं तो उसमें रिजल्ट हमारा क्या है, वो महत्वपूर्ण है। संख्या बढ़ना अलग नापदंड है, पर जो हम कहते हैं और कर रहे हैं उसमें क्वालिटी और शक्तिशाली बनना वो अलग चीज है, और अब वो जरूरी है क्योंकि विस्तार हो चुका है, संख्या बन गई है, अब बाबा जो चाहते हैं क्वालिटी वो रिजल्ट हमें देना है। अलौकिक सिद्धियां कहें, हमारी दृष्टि में शक्ति, हमारे संकल्प में सिद्धि, ये हमें हासिल होनी चाहिए। और जो स्थिति हमने बनाई है वो एक रस हो। बाबा ने भी जो हमें कहा 25 दिसंबर की मुरली में कि फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है, उस हिसाब से ऊंची और एक रस निरंतर स्थिति, ताकि कभी भी फाइनल रिजल्ट की क्षण आ जाए तो हमारा रिजल्ट अच्छा हो, इस पर हमें अब सोचने की और अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊंचाई में बहुत कम समय हम टिकते हैं, बहुत जल्दी साधारण बन जाते हैं। वो हमारा अब नेचुरल होना चाहिए कि हम ऊंची स्थिति में लंबे समय तक निरंतर टिक सके। और एक रस, इसका फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन ही है। स्थूल में, प्रैक्टिकल में सफल होते हैं तभी सूक्ष्म में प्रवेश कर सकते हैं। साकार वतन का ब्राह्मण जीवन सफल नहीं तो सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता स्थिति में हम जा नहीं सकते, क्योंकि फरिश्ता केवल स्थिति नहीं है, जीवन पद्धति है। ब्राह्मण लाइफस्टाइल से फरिश्ता लाइफस्टाइल में जाने की बात, कर्म योगी फरिश्ता से कर्मातीत फरिश्ता बनना। इसलिए ब्राह्मण जीवन के लिए जो जो बातें बाबा ने बताई हैं, वो हर बात हमारी यथार्थ और शक्तिशाली रूप से धारण हुई होनी चाहिए। कई बार हायर लर्निंग में बेसिक लर्निंग हम मिस कर देते हैं। जो मूल फाउंडेशन की बातें प्राइमरी है, पर वो फाउंडेशन है। उसका भी बहुत महत्व है। सबसे पहला है परख, सत्य को पहचानना। जब तक पहचान नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बन पाते और हमारे पुरुषार्थ में शक्ति नहीं भरते। सत्य की पहचान, स्वयं परमात्मा वही आदि पिता ब्रह्मा मुख से हर सत्य हमें बता रहे हैं। बाबा ने हर सत्य बहुत सरल शब्दों में बताया है, बहुत सहज भाषा में बताया है। बाबा ने हर सत्य बड़े सहज भाषा में बताए हैं, सहज तरीके से बताए हैं, बहुत कॉमन लॉजिक से सिद्ध करके बताए हैं, ताकि हर आत्मा समझ सके। पर सत्य है, एक 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 ज्ञान की बात जो बाबा ने बताई है वो साइंटिफिक है और लॉजिकल है। आत्मा बिंदु ही है, प्रकृति में ही रहती है, अविनाशी है, मन बुद्धि संस्कार वाली है, कर्म का प्रभाव पड़ता है, अनेक आत्माएं हैं। माना ज्ञान के हर सत्य के संबंध में जो जो बताया है वो यथार्थ है और हमारा समझना आवश्यक है। और ज्ञान को यथार्थ समझने से और स्वीकार करने से ही आत्मा में आधिशक्ति तो इससे ही आ जाती है। माना जो मुझे मनुष्य से देवता बनने के लिए जो जरूरी है वो ही सत्य बाबा ने बताए हैं। जो जरूरी नहीं है वो नहीं बताए। भले हमें प्रश्न होते हैं पर वो जानना जरूरी नहीं है मनुष्य से देवता बनने के संदर्भ में, इसलिए अब तक वो नहीं बताए। पशुओं की आत्मा कहाँ जाती करके इस टाइप के कई प्रश्न उठते हैं ना मन में। पर हमने ये देखा कि लक्ष्य जो बाबा ने दिया है उस लक्ष्य सिद्धि के लिए जो जरूरी है वो सत्य ही बाबा ने बताए, बाकी नहीं बताए। ताकि अनावश्यक विस्तार में हम न जाएं, जैसे बाबा कहते हैं ना कि विज्ञान प्रकृति की अति में जा रहा है, जिन खोजों का कोई मतलब नहीं। प्रकृति जगत की वही खोजों की आवश्यकता है जो मानव जीवन को सुखी बनाने वाली। इस प्रकार बाबा ने भी चैतन्य शक्ति के संबंध में जो भी सत्य हमें बताए हैं, जो आवश्यक है वो ही बताए। उसके भी अनावश्यक विस्तार में हमें नहीं जाना है। ताकि मूल लक्ष्य मिस ना हो जाए, है ना। कई बार हम विस्तार 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 में जाते जाते मूल केंद्र बिंदु से खो जाते, वो नहीं होना चाहिए। और बाबा ने वो बना के रखा है। तो मुरली में जो भी बातें आती हैं, साकार मुरली अव्यक्त मुरली दोनों में, उसका सीधा संबंध हमारी स्थिति और जीवन बनाने से। इसलिए बाबा कहते हैं ये स्पष्ट होना चाहिए, दुख देने वाला कौन है, सुख देने वाला कौन है, पतित बनाने वाला कौन है, पावन बनाने वाला कौन है। तो रिजल्ट आता है कि जो असत्य है वहां से मन हटता है और जो सत्य है वहां मन फोकस होता है। सत्य का मंडन, असत्य का खंडन, दोनों पावरफुल रीति से होना चाहिए। तो आत्मा ठोस शक्तिशाली बनती है। तो वो सत्य हमें पहचान में आवे, समझ में आवे और हमारी बुद्धि उसे स्वीकार करे, चाहे विनाश की जो भी और जैसी भी बातें बाबा ने बताई, डेट्स भी बताई, नहीं भी हुआ, जो भी बताया जिस रीति से, बहुत एक्यूरेट बाबा ने बताया। शायद इतना लंबा समय आध्यात्मिक पुरुषार्थ विनाश की ऐसी बातें बाबा नहीं करता तो शायद हम नहीं कर पाते। वे 76 में होगा, 2000 में होगा, इस प्रकार पीरियड को लंबा करते हुए हमारा एक लंबे समय का पुरुषार्थ बाबा ने हमसे करा लिया। और अब जब इस लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद बाबा की कही हुई वो बातों पर विचार करते हैं और थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो महसूस भी होता है कि जो कहा उस समय विनाश हुआ भी, पर नैतिकता के लेवल से हुआ और आज हम वो सिचुएशन देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली भी कैसे संसार सारा गिर गया। बाबा ने कहा तब नहीं हुआ ऐसा नहीं है, विनाश की भी एक लंबी प्रक्रिया और उनके स्टेप्स है तो वो स्टेप अनुसार होता गया है ना। व्यक्ति मानसिक रूप से गिरता, मॉरली गिरता, फिर व्यवहार में गिरता, वो धीरे धीरे हुआ है। इसलिए रोज की मुरली बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कई बार हम समझते हैं कि बाबा तो वही बात करता है ना, पर बाबा को पता है कि बार बार रिवीजन किए बिगर, बार बार हैमरिंग किए बिगर ये जीवन में नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं, जैसे कल बाबा ने बताया, स्वरूप बनना है, सिर्फ बुद्धि में धारण करना नहीं, संस्कार में लाना है। तो लंबे समय का अभ्यास चाहिए और बेसिक ट्रूथ्स तो लिमिटेड ही होंगे ना। बाबा ने कहा था कि ईश्वरीय ज्ञान मक्खन है जिसमें बैरिस्टरी, इंजीनियरी, डॉक्टरी सब कुछ समाया हुआ है। शुरू में जब सुना तब समझ में नहीं आया था, अब हम देख रहे हैं कि बाबा के ज्ञान से, मुरली से ही सभी विंग के कोर्सेस बने हैं। ज्ञान के हर पॉइंट, हर विंग के लिए मुरली से ही प्राप्त हुई है। इसलिए मूल ज्ञान में रुचि बहुत जरूरी है। जिसको हम कई बार कहते हैं ना कि भई कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो हर मुरली में आते हैं, पर ये कॉमन पॉइंट्स नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए बार बार आते हैं, जो अंडरलाइन करना जरूरी है। कल भी बाबा ने जो बताया, तन के बंधन, मन के बंधन, जो हमारी दो मूल बातें हैं, देही स्वरूप और एक बाबा की स्मृति। बाबा ने एक बार कहा था, विदेशी भाई बहने जब शुरू शुरू में आए तो बाबा ने बताया था कि अब और कुछ नया ढूंढना नहीं है, अब और कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वो ऑलरेडी बाबा ने बता दिए हैं। कई बार होता है ना कि रोज रोज वही सुनते हैं तो रुचि कम होती है, हमारी बुद्धि सोचती और कुछ और कुछ, परंतु और कुछ खोजने की बात ही नहीं है। यही मूल है, यही सत्य है, उसी की गहराई, विस्तार या अभ्यास में जाना है। तो ब्राह्मण जीवन की सफलता या स्थिरता या शक्ति का आधार सबसे पहला यही है कि हमें बाबा के बताए हुए हर सत्य की परख पहचान हो जाए और वो हमें स्वीकार हो जाए। दूसरा, दो चार दिन पहले की मुरली में ही बाबा ने कहा, कई बच्चे अपना चार्ट बाबा को लिखते हैं कि बाबा मैं आपकी याद में ही मस्त रहता हूं, बाबा नहीं मानेंगे, बाबा उसकी एक्ट को देखेंगे, उसकी चलन कर्म को बाबा देखेंगे, योग का रिजल्ट, योग का प्रभाव कर्म तक आवे तो यथार्थ योगी स्वरूप बने। योग में भी हम क्या करते, बाबा के बताए हुए मूल सत्य खुद ही खुद को साइलेंस में बैठकर याद कराते हैं, रियलाइज कराते हैं। क्योंकि वो अभ्यास जरूरी है, तभी वो हमारे में पक्का होता है। और बाबा से प्यार, बाबा से बातचीत, ताकि जो परमा है और सत्य है, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। या नंबरवार है, हम आत्माएं नंबरवार है, हमारी स्थिति भी परिवर्तनशील है। हम योग बाबा से लगाते हैं, बाबा को देखते हैं, क्योंकि परम है, सत्य है, अपरिवर्तनशील है। उससे प्यार, उसका आधार, तो अवस्था एक रस बनेगी और आत्मा का लक्ष्य अंदर अंदर पक्का होगा कि मुझे ऐसा बनना है। बाकी आत्माओं की ऊपर नीचे आई फिर हमें असर करती है ना, इसलिए योग बाबा से डायरेक्ट हम लगाते। अभ्यास, मुझे बाबा से बहुत प्यार है, पर मुझे शांति से बैठकर उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है, तो उसको प्यार नहीं कहेंगे। तो रोज का अभ्यास, अभ्यास एटलीस्ट अमृत वेला और संध्या, मेरे पास योग का बहुत गहरा ज्ञान है पर प्रैक्टिकल योग में करती ही नहीं हूं, तो मुझे योगी कौन कहेगा। तो ये अभ्यास का महत्व, अक्सर ब्राह्मण जीवन में ये देखा गया है कि जो ऑथराइज्ड है पावर या पोजीशन में है, उनके पास अभ्यास करने की फुर्सत नहीं है, और जो अभ्यास करते हैं उनके पास कोई। ये हकीकत है, मतलब अभ्यास का महत्व जीवन के हर स्टेज में। हम अच्छे सेवाधारी हैं, अच्छे मैनेजर हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पर अच्छे योगी भी हैं। हमारी उन्नति प्रगति का रिजल्ट क्या आना चाहिए? अभ्यास हमारा बढ़ना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। कई बार हमें इसका महत्व नहीं लगता है, कोई आवश्यक सेवा के लिए हम मिस करते हैं वो अलग बात है, पर अंदर से अभ्यास की वैल्यू कम हो जाए वो नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट मंजिल तो वही है ना कि योग में समा जाना, खो जाना, मगन हो जाना। मीनवाइल जब तक हम हो समाए, उसके बीच की ये सारी एक्टिविटीज सेवाएं हैं, प्रवृत्ति है। पर इन सब सेवाओं और सेवा की प्रवृत्ति या उसके लिए जरूरी जो भी हमारी प्रैक्टिकल व्यवस्था की प्रशासन की प्रक्रियाएं, वो तब तक है जब तक हम उस स्थिति में जाएं। और इसलिए ये सब कुछ हमें उस तरीके से करना है ताकि हम उस स्थिति में जा सके। तो वो मूल लक्ष्य भूले नहीं। दुनिया में हमारे से भी बढ़कर मैनेजमेंट पावर वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पावर वाले हैं, जजमेंट पावर वाले हैं, पर इन सभी पावर्स का यथार्थ उपयोग तब होता है जब आत्मा शुद्ध सत्य बनती है। वरना पावर्स तो उन लोगों के पास भी बहुत है, आत्मबल से वो भी बहुत विस्तार करते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में मूल लक्ष्य सदा सामने रहना, विस्तार में खो न जाना, सार में टिके रहना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जो नियम मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं, वो अंत तक जरूरी है। जगदीश भाई जी ने एक किताब में लिखा है कि जब तक हमारी स्थिति निर्दोष न बने, निर्दोष माना कोई भी डिफेक्ट न रहे, कमी न रहे, जब तक हमारी अवस्था निर्दोष न बने, हमारे पर किसी का ध्यान रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा भी हम योग्य बनते हैं, एबल बनते हैं, तो हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम संगठन के बंधन में या ईश्वरीय परिवार के बंधन में नहीं रहना चाहते, परंतु नहीं, हमारा अंत तक संगठन में रहना, पारिवारिक संबंधों में रहना, जो बाबा ने परिवार बनाया है, बाबा और हम बच्चे, वो बहुत जरूरी है। एक एक नियम जब बाबा ने बताए, आज वो उतने ही उपयुक्त है, बल्कि आज ज्यादा आवश्यक है। हमें याद है 50 साल पहले, 40 साल पहले, जब ये नियम मर्यादाएं बाबा ने बताई और हम चलने लगे, उस समय इतनी आवश्यकता नहीं लगती थी। उस समय अभी भी लोग क्वालिटी थे, दुनिया के लोग भी नियम मर्यादा गुणों वाले चरित्रवान थे। ब्राह्मण परिवार की एक एक आत्मा भी आदर्श थे। लोगों के आहार विहार शुद्ध थे, पर उस समय से जो धारणा की, आज जब हम सब देखते हैं कि चारों ओर कितने विकार बढ़ गए हैं, तो बरसों का ये नियम धारणा में रहने के अभ्यास के कारण आज के अति विकारी वातावरण में हमें कोई आकर्षण नहीं होता है। अब समझ में आता है लंबे समय का अभ्यास क्यों जरूरी है। माया नए नए रूप और नए नए माध्यम से सामने आती, पर वो लंबे समय से धारणा में रहने का अभ्यास हमारे में ऐसी शक्ति भर देती है कि हमें उस दिशा में आकर्षण ही नहीं होता है। अमृत वेला जल्दी उठना कितना कल्याणकारी। उस समय तो लोगों की दिनचर्या भी वही थी, रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना। ये तो टीवी कल्चर के बाद सारा बदल गया। महसूस करते हैं कि सुबह जल्दी उठना कितना कल्याणकारी फायदेमंद है। अन्न शुद्धि, आज कहते हैं कि हम अन्न नहीं खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, केमिकल्स खा रहे हैं। उस समय तो अन्न भी शुद्ध था, इतना कोई केमिकल्स वाला नहीं था। बाबा ने पहले से इन नियमों में चलाकर हमें सभी इंद्रियों के विषयी आकर्षणों से मुक्त विजयी बनाया। आज कितनी वैरायटी है, पहले तो कुछ वैरायटी होती नहीं थी। साबुन में वही दो चार थे, लाइफ बॉय और लक्ष्य। अभी कितने प्रकार की वैरायटी, हर चीज में कितनी वैरायटी, पर वो अट्रैक्ट नहीं करती। जब कुछ इतनी वैरायटी नहीं थी तभी से बाबा ने संयम करवाए, तो आज पूरा माया का पंप देखते हैं तो भी मन चलित नहीं होता है। फिल्में नहीं देखना, थिएटर में नहीं देखना, घर में भी नहीं देखना। उस समय तो सिर्फ थिएटर में जाते देखते थे, तो नेचुरली वो तो कभी कभी जाते थे, वो भी बाबा ने नियम बनवा दिए। अब विस्तार हुआ कि गंदगी जो एक जगह मिलती थी वो घर घर में मिलती है, और अब तो जहां जाओ वहां साथ ही रहती है। पर हमारा ध्यान नहीं जाता है ना, क्योंकि जब थोड़ी थी तभी से बाबा ने कंट्रोल करा दिया। नियम में जो चले, ब्रह्मचर्य, आज हर संबंध में विकार है, कोई भी रिश्ता सेफ नहीं। नैतिकता, चरित्र, पवित्रता के कोई मायने ही नहीं है आज। मैंने इतना गिर जाएगा वातावरण, वो तो सोचा ही नहीं था ना, उस समय कुछ बुद्धि में ही नहीं था, पर आज अनुभव होता है कि कितना कल्याणकारी है बाबा के हर नियम, हर मर्यादा। इसलिए जो बाबा ने कहा है वो बहुत आवश्यक है आचरण में लाना। न्यारा और प्यारा, ये दो शब्द, न्यारा और प्यारा, ईश्वरीय परिवार इतना वैरायटी हो जाएगा शायद नहीं सोचा था। एक एक गृहस्थी ज्ञानी भी आदर्श थे, अब विस्तार है, वैरायटी है, नंबरवार पुरुषार्थी है, पर हम बहक नहीं जाते हैं, गुमराह नहीं हो जाते हैं, भ्रमित नहीं हो जाते हैं, मिसगाइड नहीं हो जाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन पक्का। क्यों बाबा कहते श्रीमत, मन मत नहीं? श्रीमत पर है तो बाबा जिम्मेवार है, वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि श्रीमत हर बात का सत्य है, उस सत्य पर चलना, आत्मा में शक्ति भरना। ईश्वरीय परिवार आपस में अलौकिक है, लौकिक नहीं है। हम अलौकिक है, पुरुषार्थ और सेवा के लिए, अलौकिक परिवार में लौकिकता नहीं आनी चाहिए। वरना परिवर्तन नहीं कहेंगे। पहले लौकिक में मित्र संबंधी सब बातें थी, वो छोड़कर हम यहां आए, और यहां अगर हमने संबंध बना लिए तो परिवर्तन क्या किया? हमने पात्र बदले, वृत्ति नहीं बदली। लौकिक के बजाय अलौकिक, प्रवृत्ति हमारी वो ही रही। पहले लौकिक में आपस में तेरी मेरी करते थे, अब हम अलौकिक में आपस में करते, तो परिवर्तन क्या हुआ? पहले दुनिया के हिसाब से बात करते थे, अब हमारे ब्राह्मण परिवार के हिसाब से सेंटर सेवा वो बातें करते। व्यक्तिगत मेरी अलौकिकता मेरी सेफ्टी है। मेरी अलौकिकता मुझे संगठन में विस्तार में भी सेफ रखती। इसलिए बाबा ने कहा कि संगठन में रहते हुए भी व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहो। आज मधुबन में हम हैं, पर व्यक्तिगत पुरुषार्थ में हैं तो हम और अच्छा बन सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की कोई भी बात को, फिर वो नियम है, मर्यादा है, दिनचर्या है, पढ़ाई है या यज्ञ व्यवस्था है, उसकी कोई भी बात को हम हल्की या साधारण न समझे। अगर उसमें हम अच्छी तरह सेट होके चलते हैं तो स्थिति अपने आप बनती है और हम बहुत सहज अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। ओम शांति। टाइम हो चुका है। आप तो और गहराई में जाना और विस्तार से सोचना। 2 मिनट बाबा की याद।